बहुत सुंदर हो जाता है। सुंभंती और पुनंति, पुनंति का अर्थ है कि सब प्रकार की वासना, सब प्रकार की अविद्या उसकी नष्ट हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चेतो दर्पण मार्जनम, चित बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। प्रयास नहीं करना पड़ता है, भगवान के नाम गुण लीला आदि से युक्त जो वचन है वे वचन ही शुद्ध कर देते हैं। इन वचनों के लिए ही कहा गया है प्राणंती सुंभंती पुनंती जगत। यह जगत का अर्थ करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं श्रोत्री वक्त्रात्मकम जगत, जो सुनते हैं और कहते हैं यह जगत का अर्थ है। यदि सारा जगत भगवान की लीला कथा का श्रवण करे और वर्णन करे तो सभी पवित्र हो जाते हैं और सुंदर हो जाते हैं। तो इस संसार को यदि वास्तव में सुखी करना है, चेतना लानी है, मरे हुए संसार में यदि प्राण का संचार करना है तो भगवान का नाम बोलना चाहिए, भगवान की कीर्ति का प्रसार होना चाहिए, यही उपाय है। नहीं तो भगवान की कोई भक्ति नहीं कर रहा है, जप नहीं कर रहा है, उसमें और जप करने वाले में कितना अंतर है। मान लीजिए एक तरफ कोई मरा हुआ व्यक्ति लेटाया गया हो और एक तरफ पूर्ण स्वस्थ दूसरा व्यक्ति हो जीवित, दोनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर हो गया ना। मरे हुए व्यक्ति को कोई देखना नहीं चाहेगा और उसके स्वजन जब उसको छूते हैं अंतिम संस्कार करते समय तो वो सचायल स्नान करते हैं, वस्त्र सहित स्नान करते हैं छूकर। तो जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, भगवान से प्यार नहीं कर रहा है और खास करके भगवान के जन्म गुण और कर्म को गा नहीं रहा है, सुन नहीं रहा, तो वह उस मरे हुए व्यक्ति की तरह है। परंतु फिर भी इन मरे हुए मनुष्यों को भगवान के नाम गुण आदि से जिलाया जा सकता है। यदि जबरदस्ती भी कान में डाल दिया जाए नाम तो जी जाते हैं। ये भगवान के धाम आदि में तो ऐसे एक भी आदमी नहीं है कि जो मरे हुए हों, ये तो जीवित है, सुंदर हैं और पवित्र हैं भगवान के धाम में। लेकिन इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे स्थान हैं कि पूरा शहर में लोग मरे हुए हैं, पता ही नहीं कि भगवान कौन है। वास्तव में भगवान यहाँ अवतार लिए, नाना प्रकार के कर्म किए, जैसे गोवर्धन धारण आदि गोचारण आदि कई कर्म किए, कई नाम हुए उनके जन्म के अनुसार और कई गुण प्रकाशित हुए, उनका वंशी वादन, मंद मुस्कुराहट, पुतना का उद्धार, कृपा आदि। और भागवत इसी संसार में है लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं है, बिल्कुल अज्ञ हैं लोग। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की जो कृपा है जीवों के प्रति वो वास्तव में सराहनीय है, जीवित करने के लिए है। प्राणंति सुंभंती पुनंति वही जगत, और यास्तक विरक्ता है शव शोभनामता। और जो वाणियाँ जो वाक्य भगवान के जन्म कर्म गुण से विरक्त हैं, कहीं किसी भी अंश में टच नहीं करते हैं जो वचन, ये तो सौ शोभना मता, वो तो सौ की शोभा बढ़ा रहे हैं। पर पहले कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं बोलता है, भगवान के गुण कर्म आदि का श्रवण नहीं करता है, वो मरा हुआ है, तो मरा हुआ है लेकिन वो और वचन बोलता है, भगवान का कीर्तन नहीं करता है लेकिन और वचन बोलता है, तो वो ऐसा है जैसे सौ शोभना मता। कोई आदमी मर गया हो और मरे हुए व्यक्ति के सभी अंगों में गहना पहनाना कोई मूर्ख चालू करे, तो उसके गर्दन में गहना, कान में गहना, नाक में गहना, हाथ में सब जगह अलंकार पहनावे, और दूसरा कोई उससे भी गधा आ करके कहे वही बाप कितना सुंदर है, कितना सुंदर। तो इस तरह से कोई व्यक्ति भगवान के गुण नहीं बोल रहा है, कविता कर रहा है रस अलंकार भाव आदि से, और भगवान के जन्म कर्म गुण की कहीं कोई कोई क्रिया नहीं, कहीं कोई स्थिति नहीं है, तो वह व्यक्ति मरा हुआ है और दूसरे मरे हुए मुर्दे ताली पीटते हैं। धन्य है, वाह वाह, शाबाश शाबाश, इनाम दो, नोबेल प्राइज दो, इस तरह से करते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यह तद विरक्ता जो भगवान के जन्म कर्म और गुण से विरक्त वाग्वाक्य है, विरक्त या तद विरक्ता तेभ्य विरक्ता इति ते संशोभना मता। कई जगह हम लोगों ने देखा है, बहुत तरह के गान होते हैं दूसरे दूसरे शहरों में, स्थानों में, लेकिन किसी स्त्री का गुण गाया जा रहा है तो किसी पुरुष का गाया जा रहा है। गाते तो हैं ही, सिनेमा में गा रहे हैं, कवि गोष्ठियों में कविता बना बना करके गाते हैं, कई ग्रंथ तक लिखते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन सब तद विरक्त है, भगवान के गुण कर्म और जन्म से विरक्त ग्रंथ है। विरक्ति है तो विरक्त, जैस तद विरक्त है तो सब शोभ नाम का, सब शोभ नाम का, सब के समान। तो चक्रवर्ती पाद जी अर्थ करते हैं, जैसे भगवान के गुण जन्म कर्म प्राणंती सुंभंती पुनंती, तो भगवान के गुण आदि से जो विजुक्त वाणियाँ हैं वे जीवित को ही मारती हैं, जीवन अपि मारयंती, उसका ठीक उल्टा अर्थ करते हैं। जो जिन वाणियों, आदमी बोलता रहता है दिन भर लेकिन भगवान का नाम आदि न बोले, भगवान के गुण आदि न बोले, तो बोलने वाले तो पहले तो हो सकता है कि जीवित रहा हो थोड़ा, लेकिन ये जो वाणियाँ हैं उसको मार देती हैं, मुर्दा बना देती हैं, और मुर्दा बना करके तब उसका श्रृंगार करती हैं, तो मृतक का श्रृंगार, और इसके बाद उसको अतिशय दुष्यंती, तब शुभंती का अर्थ है कि उसको और कुरूप करती हैं, ये बातें और ज़्यादा कुरूप करती हैं और लास्ट में नरक आदि में फेंक देती है, ये वार्ताएँ। लेकिन भगवान के गुण कितने महान हैं, जन्म कितने महान हैं, उनको यदि किसी वाणी में गाया जाए तो पवित्र कर देते हैं, जीवित कर देते हैं। तो जिनके कीर्तन की यह महिमा है, ऐसे प्रभु को मैं साक्षात आँख से देखूंगा, मैं कितना पवित्र बनूंगा। जिनका नाम लेने वाला विश्व पावन हो जाता है तो मैं तो उनको देखूंगा, उनके चरणों का स्पर्श करूंगा, वे मुझको अपनी भुजाओं में लेंगे और मुस्कुरा करके स्नेह से मुझ पर वे देखेंगे, उस समय मेरा शरीर ही सबसे बड़ा तीर्थ हो जाएगा। आगे अक्रूर जी ने सब बातें कहा, जिनके श्रवण कीर्तन की इतनी महिमा है उनको डायरेक्ट साक्षात आँख से देखूंगा, ये मनोरथ कर रहे हैं। इस संबंध में यह बात बताई जा रही है कि भगवान से संबंधित किसी भी वस्तु में जीवन का संचार हो जाता है, वही वस्तु सुंदर लगती है और वही पवित्र हो जाती है। जैसे वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम और स्थानों से कोई बाह्य दृष्टि से बहुत आकर्षक नहीं है, जो घर द्वार बने हुए हैं तो सामान्य घर द्वार हैं, लेकिन लौकिक दृष्टि से कोई विचार करे तो कोई ऐसा स्थान नहीं है कि बहुत विचित्र और सुंदर सुंदर महल हों, या बाह्य दृष्टि से तो बहुत शुद्ध जल भी नहीं मिल रहा है, जमुना जी प्रदूषित हो गई हैं, बाह्य दृष्टि से सब देखा जाए। और जो विदेशों से आते हैं तो कहते हैं कि वृंदावन में बहुत गंदगी है, गलियों में इधर उधर सब, लेकिन चूंकि यह भगवान से संबंधित स्थल है इसलिए वास्तव में यही जीवित भूमि है, यह जीवन है, मतलब भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, और यही सुंदर है, और यही दूसरों को पवित्र करने वाला है, अपने आप में परम पावन है भगवान से संबंध होने के कारण। ये भगवान यहाँ जन्म लिए, यहाँ कर्म किए और यहाँ विविध गुणों को प्रकाशित किए, यही वह पावन भूमि है जिस भूमि को भगवान ने अपनी क्रीड़ा भूमि बनाया, इसलिए यह पवित्र है। चाहे बाह्य दृष्टि से, बाह्य दृष्टि मतलब अयथार्थ दृष्टि, कोई दृष्टि नहीं है बाहर की, वृंदावन को बाह्य दृष्टि से नहीं समझा जा सकता, अंतःदृष्टि चाहिए। ऐसी कथा हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार बादशाह अकबर आए थे वृंदावन में, उस समय स्वामी हरिदास जो श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किए वे रहते थे। तो घटना इस प्रकार की है कि तानसेन अकबर के दरबार में एक नवरत्नों में एक रत्न थे, गायक थे, बहुत सुंदर गाते थे। एक बार बहुत सुंदर गीत गाए तो अकबर पूछा कि तानसेन क्या तुम्हारे समान गीत गाने वाला कोई और भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर है, मैं उसका गीत सुनना चाहता हूँ। तो तानसेन ने कहा कि अरे हमसे हजारों गुना अधिक सुंदर गाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वे आपके लिए नहीं गाएंगे। तो वो पूछा कि किसके लिए गाते हैं। तो तानसेन ने कहा वो बादशाहों के बादशाह वृंदावन बिहारी के लिए गाते हैं, वो ऐसे थर्ड क्लास के बादशाह के लिए नहीं गाते। लेकिन अकबर जी भी एक भक्त थे, उनकी उत्कंठा हो गई कि चलिए हमको दर्शन तो कराइए और एक बार उनके मुख से गीत सुनना चाहता हूँ। तो ले करके आए तानसेन यहाँ वृंदावन में। स्वामी हरिदास जी रहते थे निधिवन में, तो उस समय बस्ती अस्ती कुछ नहीं थी। तो आए तो तानसेन ने कहा कि वो आपको दर्शन नहीं देंगे, आप मत जाइए, मैं जा रहा हूँ, उनका गीत आप सुनिए पहले। तो तानसेन गए, इनको एक कुंज में छिपा दिए इधर और कहे कि आप यहाँ रहिएगा और मैं जा करके एक गीत गवाऊँगा। तानसेन जी गए और अपने गुरु महाराज से स्वामी हरिदास से कहे कि आपने हमको बताया था कुछ गीत गाने को, तो मैं कुछ विस्मृत सा हो रहा हूँ, मल्लार राग गाना था जिसको गाने पर वर्षा होने लगती है, बादल छा जाते हैं, वर्षा होने लगती है। तो जानबूझ करके उन्होंने गलत गाया। हरिदास जी ने कहा कि आप जरा गाओ कैसे गाते हो। तो जानबूझकर तानसेन उस राग को बिगाड़ कर गाए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है तानपुरा दो। तो स्वामी हरिदास जी तानपुरे पर गाने लगे, इतना सुंदर गाए, वो तो प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए गाते थे, वास्तव में किसी व्यक्ति के लिए नहीं गाते थे। तो गाने लगे, गाने लगे तो तुरंत बादल छा गए, वर्षा होने लगी और इतना सुरीला राग, इतना अच्छा गीत कि अकबर प्रेमानंद में मूर्छित हो गए, होश खो गए उस गीत को सुन करके, भजन को सुन। तो बाद में तानसेन जी ने चरणों में प्रार्थना किया कि बादशाह अकबर आए हैं आपके श्री चरण का दर्शन करने के। वो तो अवाक रह गए, इतने पवित्र महात्मा, ये राजा आवे कोई आवे उसके दर्शन किया, उसे भेंट करने की कोई लालसा नहीं होती थी। फिर उन्होंने कृपा किया, ठीक है, तानसेन ले गए अकबर को, दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद अपने भाग्य की सराहना की अकबर जी, और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई सेवा बताएं आपकी, हम क्या सेवा करें। तो स्वामी हरिदास जी ने एक अद्भुत अभिनय जैसा किया, उन्होंने कहा कि यदि आप सचमुच सेवा करना चाहते हैं तो जमुना जी के पास एक घाट का कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत कर दीजिए। तो उनको दिव्य दृष्टि दिया उन्होंने अकबर को, और भेजा जमुना जी के तट पर। तो जमुना जी के घाट को टूटा हुआ अकबर ने देखा कि ऐसे रत्न का बना हुआ है कि हमारा पूरा साम्राज्य बेच दिया जाएगा फिर भी ये नहीं आ सकता, इतने और देखे थे, उन पर कृपा हुई स्वामी हरिदास जी। तब ये आकर के चरणों में गिर गए, कहे कि हमें पता नहीं था कि वृंदावन में केवल सारी भूमि रत्न की है, और वो भी चिंतामणि चिन्मय रत्न है। चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षा वृतेषु सुरभि रविपाल। ये बाहर से देखने में साधारण भूमि लगती है, लेकिन वास्तव में चिंतामणि भूमि, चिंतामणि भूमि, और जो जल है वास्तव में वो अमृत है, जल नहीं है यहाँ का। तो इस तरह ये बात प्रकट होती है, जैसे मैं कहा बाह्य दृष्टि या अंतर्दृष्टि। वृंदावन तो भगवान का अपना घर है, स्वयं भगवान परब्रह्म का यह निवास स्थान है, इसीलिए यह सर्वोत्कृष्ट है, सब तरह से यह परम पावन है, भले हमको समझ में आ रहे या ना आ रहे। तो वृंदावन के विषय में कुछ वाक्य हैं, लिखे गए हैं, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। देशो यम श्रीष्पादाम्बुज कलित रजो राज साम्राज्य सोगो, देशो यम श्रीष हस्ता कलित सुमलता द्यागमोद भाष्यमान, देशो यम श्रीष रत्युत्सुक ज्योति कृता अनेक पुष्पाल प्रतल्पो, देशो यम श्रीष केली श्रित सित सिकतालंग कृत संविभाति। देश अयम, यह ब्रज प्रदेश, ब्रज वह देश है, यह वह देश है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण से कलित रज रजराजी का साम्राज्य है। यहाँ जितना भी रज है ब्रज में, वह सब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों द्वारा अलंकृत हुआ है। ऐसा एक भी रज नहीं है जहाँ भगवान के चरण न पड़े हों, कहने का आशय यह। देशो अयम श्रीश पादाम्बुज कलित रजो राज साम्राज्य शोभा, रजो राज साम्राज्य शोभा, रज राज्य, रज के समुदाय के साम्राज्य से यह शोभित है। इस भूमि की शोभा रज से है, इस भूमि की शोभा यह मकान रोड आदि से नहीं है। यह वास्तव में यहाँ रज की महिमा है। तो यहाँ का रज, प्रत्येक रज भगवान के चरण कमलों से कलित है। कलित का अर्थ होता है भगवान चरण रखे हैं, और चरण केवल रखे ही नहीं है, धूली में भी लोटे हैं, सोए हैं, खेले हैं, बच्चों के साथ जमुना जी के किनारे बिछड़ी भी खेलते थे। माँ जशोदा खाने के लिए बुला रही है, जिस दिन उखल बंधन हुआ था कृष्ण को, फिर उखल से खोला गया तो भाग गए थे, रंज हो गए थे, उनको बांधा जाए तो जाकर खेलते थे, अथवा अन्य बच्चों के साथ खेलते रहते। कहाँ खेलते थे, खेलने के लिए ऐसा कोई पार्क नहीं था कि जिसमें फीस लेकर के और बच्चों तक को दाखिल किया जाए। तो खुला मैदान था, कहीं बालू था, कहीं पिछल मिट्टी थी, उस पर बच्चे सड़क सड़क करके जाते थे और बहुत खुशी मनाते, कृष्ण में मिट्टी का लेप हो जाता था, चाहे सूखी मिट्टी है चाहे गीली मिट्टी है, भगवान है कि रज में खेले हैं, इस रज की विशेषता है। और कभी भी यहाँ में पदत्राण जूता नहीं पहने, बच्चा थे तब से लेकर और किशोर अवस्था तो कभी भी यहाँ वो जूता नहीं पहने, और सदा धूली में लौटा करते थे। जब गाय चरा करके आते थे वृंदावन से, तो उनके शरीर की जो शोभा होती थी, श्री विग्रह की शोभा होती थी, तो उसमें ब्रज की धूली भी एक महत्वपूर्ण अलंकार होता। तम गो रजस छुरित, भागवत में लिखा गया, छुरित का अर्थ व्याप्त। भगवान गाय चरा कर आते थे तो गौएं आगे आगे चलती थी, आगे आगे चलती थी तो धूल उड़ती रहती थी, और भगवान पीछे पीछे आते थे, आगे गई या पीछे ग्वाल गावे मृदुता ने भी, तो धूली पड़ती रहती थी। आते आते पूरे अलकों पर धूल, पीताम्बर पर धूल, मुख पर धूल, सब जगह धूल। माँ जशोदा देखती थी तो यही चिंता करती थी कहीं आँख में धूल ना पड़ जाए, तो कहती थी कृष्ण आँख बंद करो, आँख बंद करो, कृष्ण आँख बंद करते थे, तो माँ जशोदा अपने मुख से फूंकती थी कि आँख की धूल हट जाए, और इसके बाद अपने आँचल से धीरे धीरे धूल को दूर दूर करती थी। कृष्ण को कहते थे आँख बंद रखना, नहीं तो धूल आँख में चली जाए। भगवान आँख बंद किए रहते थे, माँ आँचल से इसको छुड़ाती थी और कहीं कहीं फूंकती थी कि धूल निकल जाए। कहती थी क्या कितना धूल लेकर के आता है, और फिर कपड़ा झाड़ती थी, तुरंत कुछ खिला करके और स्नान कराती थी। शाम के समय कृष्ण बलराम स्नान करके बहुत फ्रेश वस्त्र पहन करके गाय दुहवाने जाते थे, तो वन में कई जगह वो मिट्टी लग जाती थी खेलने में कूदने में, दिन भर तो खेलते ही रहते ब्रजराज में। तो यह वह देश है वृंदावन, वह देश है देशोयम कि श्रीष पादाम्बुज कलित रजो राज साम्राज्य शोभ और देशोयम श्रीष हस्त कलित सुमलता द्याग सुमलता दि आगमोद भाष्यमान। यह वह देश है जहाँ के प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक लता से भगवान फूल तोड़े हैं, भगवान के कर कमल का स्पर्श प्राप्त है। आज भी कोई भले इस बात को देख नहीं पावे, लेकिन वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष के पुष्प का चयन भगवान अपने श्री हस्त से करते हैं और लता का आलिंगन करते हैं, वृक्ष का आलिंगन करते हैं, वृक्षों पर चढ़ते हैं, खेल कूद करते हैं, लताओं से श्रृंगार करते हैं। भगवान यहाँ आकर के इस धाम में प्रकट होकर के जो सबसे अधिक पसंद किए हैं तो वृक्षों के पत्तों को, फूल को, फल को पसंद किए और एक पक्षी मयूर के पंख को पसंद किए। तो श्री हरिश्वर जी कहते हैं कि यह वह देश है, वह स्थान है जहाँ के प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक लता का स्पर्श भगवान के हस्त कमल को मिला हुआ है, मिलता रहता है निरंतर। देशो अयम श्रीष रत्युत्सुक ज्योति कृता अनेक पुष्पा पुष्पाल तल पर। यह वह देश है जहाँ के प्रत्येक कुंज में श्री कृष्ण के साथ विहार करने के लिए ब्रजांगनाओं के द्वारा बनाए हुए छोटे छोटे तल्प पाए जाते हैं। तल्प का अर्थ सज्जा, जैसे सेवा कुंज में तल्प। प्रत्येक कुंज में भगवान से मिलने के लिए उत्सुक ब्रजांगनाएं भगवान को सुख देने के लिए अपना अपना तल्प बनाती हैं। तल्प सज्जा, जहाँ भगवान सुख से सोएंगे, विहार करेंगे और वे भगवान के चरण कमल का संवाहन करेंगे। जैसे कल कथा में आई थी, जद गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकित, और कृष्ण एक ही समय में लाखों लाखों रूपों में अपने को प्रकट कर देते थे। तो चंद्रावली उधर सेवा कर रही है, राधा रानी उधर सेवा कर रही है, और जितनी गोपियाँ थी उतनी उतने रूपों में भगवान होकर के और सेवा लेते थे। तो यह वह देश है जहाँ भगवान को सुलाने के लिए, भगवान के साथ विहार करने के लिए अनेक पुष्पों के अल्प सज्जाएँ बनी हुई हैं। और देशो एवं श्री केल श्रित सित सिकतालंकृत सम विवाद। यह वह देश है जहाँ पर भगवान के केली से अलंकृत बालुका है, सित सिकतालंकृत उज्ज्वल बालू है, बालू पर भगवान खेले हैं। यहाँ के बालू को भगवान ने बहुत पसंद किया है, जमुना के पुलिन पर ही वे सबसे सुंदर विहार किए, रास विहार किए। तो यहाँ का जो सित सिकता, सिकता मतलब बालू, यहाँ का बालू भगवान के चरण कमलों के संस्पर्श से अलंकृत। फिर कहते हैं भूभागोयम अलंकृत सरलित दुर्मांत हिंदोलक। यह वह भूभाग है इस पृथ्वी पर जहाँ भगवान कृष्ण को झूला झुलाने के लिए हजारों झूला बनते हैं। यहाँ यह वह देश है, केवल आज ही नहीं, ये नित्य लीला की बात कही जा रही है। भगवान को झूला झुलाया जाता है और इसमें भी प्रत्येक मंदिरों में सब जगह झूला झूलते हैं भगवान। तो यह वह देश है जहाँ पर हजारों हजार झूला लगते हैं भगवान को झुलाने के लिए, ऐसे वृक्ष हैं। और स्वाच्छंद्याद अनु कल्पित अभिनव नाना विधेय क्रीड़न। और यह वह देश है जहाँ भगवान स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं और नाना विधेय और नई नई क्रीड़ा खेल खेलते ही रहते हैं। जो व्यक्ति आनंद में होता है वास्तव में वो नाचता है, गाता है, खेलता रहता है। तो भगवान यहाँ हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं। मथुरा जाने के बाद खेलने का अवसर नहीं मिला, यहाँ खेलते रहते कई प्रकार का खेल। जैसे आँख मिचौनी एक खेल है, कोई बच्चा आकर के आँख बंद करता है, पूछता है, चुपचाप रहता है, पहचानना पड़ता है जिसकी आँख बंद की गई है कि कौन है। तो ऐसे हाथ पकड़ करके वो छूता है या कुछ देखता है कि ये हो, अगर वो नहीं बता पाता है तो उसकी हार मानी जाती है, आँख मिचौनी अथवा तुम यहाँ आँख बंद करो, मैं छिपता हूँ। तो आँख बंद किए रहता है, कभी कभी हमने देखा है कुछ बच्चे ऐसे आँख बंद करते हैं तो चुपचाप देखते रहते हैं वो छिपने वाला है कहाँ जा रहा है। तो भगवान को तो ऐसे देखने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो सर्वदृष्टा, उनकी पीठ भी देखती है, अंगानी जस सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, परंतु फिर भी भगवान खोजते थे, बिल्कुल अज्ञ बच्चों की तरह खोजते थे कहाँ छिपा कहाँ छिपा, वो सर्वज्ञ सब जानते हैं। कभी खेल होता था घोड़े बनने का, घोड़ा बनने का और घुड़सवारी का, कि जो हारेगा वो ढोएगा और जो जीतेगा वो सवार बनेगा। यह वह भूमि है जहाँ भगवान ये सब क्रीड़ा किए। कहीं कहीं पर रस्सी लेकर के और 10-20 ग्वाल बाल इधर और एक तरफ कृष्ण खींचते थे, एक तरफ बलराम जी रहते थे, खींचते थे कौन खींच रहे, तो कभी ऐसे झटका देते थे ग्वाल बाल भगवान भी गिरने गिरने हो जाते। वही प्रभु जो तीन पग में भूमि नाप लिए, हिरण्यकश्यपु को मारे हैं, लेकिन यहाँ वे खेल में हार जाते, हार जाते। तो कोई बच्चा अपने हाथ में छोटा छोटा आंवला लेकर के बुझावल बुझाता है कि बताओ हमारे हाथ में क्या है और कितना है, और भगवान बता नहीं पाते हैं, गलत बताते हैं। वेद वक्ता सर्वज्ञ जो ये कहते हैं, वेदा हम समतीतानी वर्तमानानी चार्जुन भविष्याणी च भूतानी, सब कुछ जानता हूँ भविष्य वर्तमान और भूत, लेकिन वे बच्चे के हाथ में 2-3 आंवला को नहीं बता पाते हैं कि क्या है और कितना है। इस तरह से भगवान खेलते रहते हैं, गाय चलाते चलाते कभी झूला झूलना, तो कभी मेंढक की तरह उछल उछल करके चलना। मेंढक चलते हैं तो अपने पूरे शरीर को टांग कर गिराते हैं, यदि पैर दिया है भगवान ने, लेकिन बहुत कम वैसे चलते हैं। मेंढक का स्वभाव है पानी में भी ऐसे उछलते हैं, जमीन पर भी उछल कर चलते हैं। तो श्री कृष्ण मेंढक को देख करके उसकी नकल करते थे, तो अपने पैरों पर ही वे थोड़ा थोड़ा उछलते थे, छोड़ा छोड़ा उछलते, और पूछते थे क्या मैं मेंढक से कम हूँ, अरे नहीं तुम तो मेंढक के बाप हो। तुम तो हरा दिए मेंढक। वास्तव में सर्व जोनि सु कौन थे अमूर्ते संभवंति या तासाम ब्रह्म जोनि अहम बीज प्रदोपी, तो मेंढक क्या किसी के भी वास्तविक बाप तो कृष्ण है। तो कभी कभी सखा कहते थे कि बाप के बाप मेंढक क्या ऐसे उछलेगा। अच्छा कोयल बोलता था इस वृंदावन में, बोलता है कहना चाहिए, तो श्री कृष्ण उसकी बोली की नकल करते हैं, कुहू कुहू, तो इतना मीठा बोलते थे कोयल लजा जाता था, ये तो हमसे अच्छा बोल रहा है, लज्जित हो जाता था, इतना सुरीला कंठ। और प्राय गाय चराते समय ऐसी बोली वो बोला ही करते थे, कभी बानर की तरह किसी पेड़ में झूलने लगते थे। और ये भी पूछते थे क्या मैं बानर से कम हूँ, मैं भी ऐसे चढ़ जाऊँगा, ऐसे करूँगा, ये करूँगा। और कभी कभी बानरों को सामने देख करके मुख बनाते थे, हाँ ऐसे। तो ये प्राय रोज की लीला है। यह वह भूमि है जहाँ यह परम पुरुष परमात्मा भगवान स्वच्छंद विहार करते हैं। हरिश्री जिसमें कहते हैं स्वच्छंद, स्वच्छंद छंद का अर्थ है इच्छा, अपनी इच्छा से, किसी के द्वारा रूटीन नहीं बनाया गया है कि गाय चराने जाना पड़ेगा, लोग रोकते रहते हैं तो चले जाते हैं। दूसरे लड़कों को मैं देखा हूँ गाय चराने जाते हैं, भैंस चराने तो रोते जाते हैं, क्या करें, घर वाले बाध्य करते हैं जाना ही पड़ेगा। कई बार हमने देखा है, और कुछ तो पढ़ने भी नहीं जाने देते हैं, वही गाय बकरी चरवाते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना। जो भी हो, भगवान अपनी इच्छा से गाय चराने जाते थे, खेलते रहते थे, खाते थे, और यहाँ से घर से ले जाते थे कुछ सामान, गोप सखा आदि, खास करके दही भात, तो उसको भी श्री हरिश्री जी कहते हैं कि भू भागोयम उर्जित तरुदलय राभुक्त दध्योदन स्वल्पानेक कणई। यह वह प्रदेश है जहाँ पर भगवान कृष्ण के खाए हुए उच्छिष्ट दही और भात के कण को कहीं भी पत्थर पर पाया जा सकता है। घर से प्लेट लेकर नहीं जाते थे, बर्तन लेकर के नहीं जाते थे, सब और खाते थे, हजारों हजारों बच्चे थे तो वृक्षों के पत्ते तोड़ते थे उन पर खाते थे, अथवा पानी से धो करके पत्थर पर खाते थे, भोजन थाली। ये भगवान की यहाँ भोजन थाली पत्थर है, यहाँ पत्थर पर तो कुत्ता को खाने को डालते हैं, कोई आदमी तो पत्थर पर नहीं खाता होगा ना लेकिन भगवान यहाँ पत्थर पर खाए, वो पत्थर पत्थर नहीं है, वो तो भगवत स्वरूप है, चिन्मय। हरिश्री जी कहते हैं कि यह वह देश है जहाँ के वृक्षों के दोने बने हुए और पत्थर पर जहाँ तहाँ दही भात का कण दिखाई पड़ता है, और मणिमा ये सोचते हैं कि हमारे जैसा व्यक्ति वो जा जा करके उस कणों को खाता रहता है, चाटता रहता। आज भी ये लीला चल रही है, इस तरह से यह देश धन्य है, ये वृंदावन धन्य है। न तादृक भूभागो यह हरिपादाब्ज रहित, अब निगेटिव रूप से कह रहे हैं, ऐसा कोई यहाँ भूमि नहीं है जो भगवान के चरण के स्पर्श से रहित हो। न तादृक च वृक्ष हरिकर मृदु स्पर्श विकल, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसे भगवान कृष्ण के कर कमल का मृदु स्पर्श न मिला। नवा तादृक जंतुर हरि सदैव विक्षा विरहित, ऐसा कोई जीव नहीं है इस ब्रज में, चाहे वो पक्षी हो या पशु हो या कीट पतंग, जिस पर भगवान ने स्नेह से न देखा हो, सबको अपने समझ करके न देखा। जैसे माँ अपने बच्चों को स्नेह से देखती है, सबकी हिफाजत करती है, उस तरह से भगवान अपने ब्रज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर दया दृष्टि से देखते हैं कि यह हमारा है, और ब्रज में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण अपना समझने लगते हैं, ये उनका स्वभाव है और मानते हैं कि यह मेरे घर में आया है, और इस धाम की स्वामिनी है श्री राधा रानी। तो भगवान मानते हैं, राधा रानी मानती हैं बहुत स्नेह की दृष्टि से कि, और कुछ लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने पर देवता लोग बहुत क्रोध की दृष्टि से देखते हैं, ये कहाँ से आ गया, वो तो यहीं से नहीं जाने देते हैं। कोई साधु तपस्या करता है स्वर्ग जाने के लिए तो देवता लोग कोई अप्सरा आदि भेज करके यहीं रोक देना चाहते हैं, तपस्या से भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। और जब देवता पहुँचता है तो वहाँ पर कोई रिसेप्शन नहीं होता है, कोई अगवानी नहीं होती है कि आया है, और लोग देवताओं को, जो देवताओं में सरदार है उन लोगों को चिंता होती है कि अरे ये आया है अब तो ये प्रधान बनाया जाएगा यहाँ, इस तरह से चिंता हो जाती है। परंतु भगवान का यह धाम ऐसा है जहाँ कोई भी व्यक्ति आवे तो भगवान उसे अपना मानते हैं और सदैव इच्छा सदैव दृष्टि डालते हैं कि यह मेरा है, केवल आने मात्र से। यह वह देश है, यह वह देश है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति भगवान के कृपा दृष्टि से वंचित नहीं है। तदेशम भाग्यम जुगपत उपलब्धम कथम हो, क्या इन्होंने किया था कि इस प्रकार का भाग्य सबको मिला हुआ है। जस्मिन क्रीत निंदिराधिपतिना देश स धन्यो न किम, अरे वह देश क्यों नहीं धन्य है जिस भूमि में इंदिरापति क्रीड़ा करते हैं, लक्ष्मी नायक भगवान श्री कृष्ण जहाँ विहार करते हैं, वह देश क्यों नहीं धन्य है। धन्य न किम तेवा धन्य तरह कथम न तरो जेशम फलेप्सु प्रभु, तो यहाँ की भूमि धन्य है और धन्यतर कौन है जिन वृक्षों के फल को भगवान अपने हाथ से तोड़ करके और खाते हैं, वे वृक्ष धन्यतर क्यों नहीं है। और तेवा धन्यतमा कथम न हरिणा भुक्तम तो हो यही समम, और वे गोप सखा गोप मित्र भगवान के, वे क्यों नहीं धन्यतम हैं जो भगवान के साथ भोजन करते हैं, कृष्ण के साथ बैठ करके भोजन करते हैं तो धन्यतम हैं, और जिनके फल को भगवान खाए वृक्ष धन्यतर हैं और यह भूमि धन्य है। तो अक्रूर जी कहते हैं कि जब मैं धन्य का संग करूँगा, धन्यतर का संग करूँगा, धन्यतम का संग करूँगा, तो क्या मैं धन्य बनने से वंचित रहूँगा, मैं तो धन्य हो ही जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ संग करने के लिए धन्य का, धन्यतर का और धन्यतम का, तो मैं क्यों नहीं धन्य हो जाऊँगा। वे कहते तेवा धन्यतमा कथम हरिणा भुक्तम तो हो यही समम, धन्य धन्य चतराच धन्यतम तो अप्यद्यास भी धन्य न किम, तो जो व्यक्ति धन्य का धन्यतर का और धन्यतम का संग करेगा तो धन्य नहीं हो जाएगा क्या। मैं निश्चित ही धन्य हो जाऊंगा ब्रज में जा करके। इस तरह से अक्रूर जी मनोरथ करते हुए जा रहे, मैं भगवान का दर्शन करूंगा, ऐसे करूंगा। तो केवल भगवान के दर्शन की नहीं लालसा है, भगवान के दर्शन की जितनी लालसा है उतनी ही भगवान के इस धाम के दर्शन की लालसा। इसीलिए हरिश्री जी संबंध जोड़कर कह रहे हैं कि जब भगवान के गुण और नाम लीला और जन्म को टच करने के कारण कोई वाणी जगत को जीवित कर सकती है, अलंकृत कर सकती है और पवित्र कर सकती है, तो भगवान का धाम और भगवान के धाम में अस्थित वृक्ष और भगवान के सखा आदि यदि इनका कोई संग करे तो वह कितना धन्य है, कितना भाग्यवान है। तो मैं महाभाग्यवान बन करके रहूँगा, इस तरह से मनोरथ करते हुए यहाँ आए हैं। हरे कृष्ण, जय श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सचावतीर्ण किल सत्वतान्वये, सेतुपाला मरवर्य शर्मकृ, यशो वितन्वं व्रजयास्तईश्वरो, गायन्ति देवा जगशेषमङ्गलम्। तं तोऽद्य नूनं महतां गतिं गुरुं, त्रैलोक्यकान्तां दृशिमान् महोत्सवम्। रूपं दधानं श्रियवीप्सितास्पदं, द्रक्षे ममासन उषसः सुदर्शनः, अथावरूढः सपदेशयो रथात्, प्रधान पुंसश्चरणं स्वलब्धये, धिया धृतं यो गिरप्यहं ध्रुवं, तस्य आभ्यां च सखीं वनौकषः, अप्यांग्रिमूले पतितस्य मे विभुः, शिरस्य धास्य निजहस्तपङ्कजम्, दत्ताभयं कालभुजङ्गरंहसा, प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणां, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीपाद श्रीधर स्वामी इन श्लोकों की व्याख्या में, प्रस्तुत श्लोकों की व्याख्या में वे कहते हैं कि यहाँ कुलकम है। कुलकम का अर्थ होता है चार श्लोकों का एक में अन्वय। दो श्लोकों को युग्म कहते हैं और तीन को त्रिक और चार को कुलकम कहते हैं। तया इच्छिता हम रहित प्यसत सतो और जस्य खिलामी बहनी सुमंगलई स चावत्तीर्ण और तंतोद्यमूनम विचार श्लोक। तो तीन में भगवान की महिमा गा करके और चौथे में दर्शन का मनोरथ कर रहे हैं, भगवान का दर्शन होगा इसका निश्चय कर रहे हैं। सच अब यहाँ से हम लोग चलेंगे। सच अवतीर्ण, सच अवतीर्ण, चकार का यहाँ अर्थ है एवार्थ, वही प्रभु अवतरित हुए हैं। सच स मैंने वह चाहे वे और च का अर्थ ही वही, सच वही अवतीर्ण हुए हैं। कौन इसका संबंध पहले श्लोक से है, कौन अवतीर्ण हुए हैं जदुवंश में। यिता हम रहितो प्यसत सतो और जस्य खिलामी बहनी सुमंगल, इन दो श्लोकों का संबंध है। जो प्रकृति के ईक्षण करता है, जिन्होंने सारे विश्व का निर्माण किया है परंतु इसमें कभी आसक्त नहीं होते हैं, जिन्हें कभी अहंकार नहीं छू पाता है और जिनको लीला करते हुए वृंदावन के कुंजों में और गोपियों के घरों में देखा जा रहा है, एक आसक्त व्यक्ति की तरह वे गाय चरा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो परम कृपालु हैं, कृपा करके इस विश्व में विविध लीला करते हैं, जन्म लेने तक की लीला करते हैं, कर्म करते हैं, विविध गुण प्रकाशित करते हैं और उनके गुण कर्म और जन्म से मिश्रित वाक्य भी इस जगत को पूर्णतः जीवित कर देते हैं, शुद्ध सुशोभित करते हैं और पवित्र कर देते हैं, वही प्रभु अवतीर्ण हुए। यहाँ से इसका कनेक्शन है। और चौथे में अभिलाषा है, तम तद्यनूनम महतांग गतिम गुरु नित्या। सच और चकार तू अर्थे भी प्रयुक्त होता है, तू अर्थे चकार श्लोकों का संबंध है, इसलिए मैं यहाँ संस्कृत का शब्द बोल रहा हूँ। सच्चा क्या आवश्यकता है कि भगवान यहाँ अवतार लें, जब उनके गुण जन्म कर्म विख्यात हैं तो लोग गा गा करके पवित्र बनेंगे, सुशोभित होंगे, भगवान को यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। जो भी हो, अक्रूर जी मन में ये सोच रहे हैं कि जिनका नाम, जिनका गुण है, जिनकी लीलाएं जगत को पवित्र कर देती हैं, समस्त वासनाओं को धो देती हैं, अमंगल के मूल पापों का विनाश कर देती हैं और सब प्रकार का मंगल देती हैं, वही प्रभु साक्षात आए हुए हैं। जी तो अपने गोलोक धाम में रहते हैं, दिव्य धाम में, अपराकृत जगत में, तो उनके गुण आदि ही संसार में जीवन का संचार करते हैं, पवित्र करते हैं इत्यादि, पर वही आए हुए हैं। सच अवतीर्ण, सच अवतीर्ण किलसात्वतान्वय, स ईश्वर अवतीर्ण, क्यों अवतार लिए हैं। स्वसे तुपाला मरवर्ज शर्म कृत, भगवान का यह स्वभाव है कि वे देवताओं को सुख देते हैं, जैसे कहा गया गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय, वैसे तो समस्त जीवों को सुख देते हैं भगवान कृष्ण, यह उनका स्वभाव है, सुख देना ही उनका कार्य है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, दुख व्यक्ति अपने कर्मों से भोगता है, परंतु सच्चा सुख भगवान देते हैं अपनी ओर से, कर्म नहीं देखते हैं जीवों का। तो विशेष करके वे समस्त जीवों को सुख देते हैं दो प्रकार के कार्यों का, एक तो दुष्कृतियों का विनाश करते हैं, जो संसार को डिस्टर्ब करते हैं उनको शांत करते हैं मार करके, और जो भगवान के आज्ञा पालक देवता गण हैं, जो भगवान की बनाई हुई मर्यादा का पालन करते हैं, उन देवताओं का संकट दूर करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यह बात अनेक स्थान में भागवत में कही गई है। स्वसे तुपालामर, स्वसेतु का अर्थ है कि स्वयं ही भगवान ने कुछ सेतु बनाया, मर्यादा बनाया। मर्यादा का अर्थ है रूल्स एंड रेगुलेशंस। मनुष्य को ठीक से जीने के लिए, इस लोक में भी सुखी रहने के लिए और परलोक में भगवत चरण कमल की प्राप्ति वह कर ले या कम से कम स्वर्ग आदि प्राप्त करे, इसके लिए भगवान ने कुछ सेतु बनाया है जिसको वर्णाश्रम निबंधन कहते हैं, वर्ण के धर्म, आश्रम के धर्म। परंतु कुछ समय ऐसे आ जाते हैं कि कुछ लोग भगवान के द्वारा बनाई हुई मर्यादाओं का उच्छेद करते हैं, नहीं पालन करते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि ऐसा मत करो।
और यहाँ तक कहता है कौन भगवान है, कौन बनाया है, कुछ नहीं, सब आदमी का बनाया हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं तो देवता लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी शक्ति नहीं चलती है, तब वे भगवान को पुकारते हैं। इस श्लोक में कहा गया है अमर वर्ज शर्म कृत। शर्म का अर्थ होता है शांति, सुख। जो व्यक्ति शांति में रहता है, कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, उसको शर्मा कहते हैं। ब्राह्मण के नाम में यह टाइटल रहते शर्मा जी। तो शर्मा जी का मतलब है पूर्ण सुखी, पूर्ण शांत व्यक्ति। अब कभी उसमें क्रोध नहीं देखा जा सकता है और संसार के भोगों के लिए कभी उद्वेग, कभी लालसा नहीं देखी जाती है, वे शर्मा का है। बहुत ऊंची उपाधि है वास्तव में। तो भगवान देवताओं को शर्मा बनाने के लिए अवतार लेते हैं, तो उनको शर्म कृत, शर्म देने के लिए। गीता में अर्जुन ने इस शब्द का प्रयोग किया है, दिशो न जाने न लभे च शर्म। भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन इतना घबरा गए, डर गए, कि वे कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, हमारा गांव हस्तिनापुर कहाँ है, मैं कहाँ फंस गया, आज रे बाप, हटाओ हटाओ इस रूप को, जल्दी हटाइए जल्दी हटाइए, आप कौन है कौन है, मैं तो डर रहा हूँ, थर थर काँप रहे थे। तो भगवान कहते हैं माते व्यथा माँ च विमूढ भाव, डरो मत घबराओ मत, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, केवल कुरुक्षेत्र में दूसरे योद्धाओं को खा रहा। और जो देखे कि भगवान वैसे खा रहे हैं वीरों को जैसे कोई रोटी का टुकड़ा खाता, पूरा हाथ पैर आदि लिए दिए ऐसे और दांतों से दबाते थे, अर्जुन तो बिल्कुल भयभीत हो गए। कहते हैं मुझे दिशाओं का पता नहीं चल रहा है, लभे न शर्म, मुझे कोई शांति नहीं है, अब कौन है हमको माफ़ कीजिए माफ़ कीजिए। ये भी भूल गए कि उनका मित्र ही है और इन्होंने प्रार्थना किया था विराट रूप देखने। तो शर्म का अर्थ होता है शांति, सुख। भगवान देवताओं को सुख देने के लिए सर्वदा विचार करते रहते हैं, और देवता जब सुखी रहते हैं तो सारे विश्व को सुखी करते हैं, सभी जीवों को सुखी करते हैं। देखिए एक देवता इंद्रदेव वर्षा करते हैं तो सभी जीव सुखी। इस तरह से जो जीवों के उपकारी हैं उन देवताओं की रक्षा करना, उनको सुख देना, यह भगवान का कर्तव्य है। भगवान सुख देते हैं। स्वसे तु पाला मरवर्ज, अथवा भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों के पालन करने वाले देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं उनको सुख देने के लिए, ब्रह्मा जी को सुख देने के लिए। स्वसे तु पाला मरवर्ज, देवताओं को अमर कहा जाता है, तो देवता सभी भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं, इनमें सबसे वर्ज श्रेष्ठ हैं श्री ब्रह्मा जी। और भागवत में यह प्रसिद्ध बात है कि ब्रह्मा जी के कहने से भगवान अवतार लिए। श्री गोपी जन भी कहती हैं गोपी गीत में, बिखन सारथी तो विश्व गुप्ते सख उदयवान सात्वता अनुकूलें, बिखन सा अर्थित, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप देवताओं का काम करने के लिए अवतार लिए हैं तो हम मनुष्यों पर कहाँ से ध्यान दें। और इस प्रार्थना का भाव यह है कि जब विश्व का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के कहने से अवतार लिए हैं तो हम तो विश्व के भीतर ही हैं, हम बहुत दुखी हैं, आप कृपया प्रकट हो जाइए। महारानी कुंती भी कहती हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप अवतार लिए हैं। आत्मभूअर्थित ये शब्द है, स्वयंभू के द्वारा अर्थित होकर आप अवतार लिए। यहाँ पर अक्रूर जी मनोरथ करते हुए सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान अवतार लिए हैं, कहाँ? सात्वतान्वय। तो इसका अर्थ है कि गोलोक में, वैकुंठ में जो भगवान की स्थिति है उससे कुछ विशिष्ट वर्णन कर रहे हैं। सच अवतीर्ण उतरे हैं यहाँ, किल इति शास्त्रादि प्रसिद्धिम प्रमाणयति। किल शब्द का अर्थ है यह शास्त्र प्रमाण है, यह आदि शब्द से लोक प्रमाण सब कुछ। तथापि ब्रह्मांड नायक से तस्य सर्वकृतत्व न गिर गया, पन्ना भी गिर गया, एक आदमी उठा कर दीजिए माइक गिरा। ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी हैं, भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए, सिलेक्टेड नायक हैं, इलेक्टेड नहीं, चुनाव द्वारा नहीं बनाया गया, सिलेक्ट करके भगवान ने उनको बनाया। तो उनको सुख होगा, वो ठीक से रहेंगे तो अपने अधीन सारे देवताओं को और सारे जीवों को सुख से रखेंगे। इसलिए भगवान उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो इस विश्व के मैनेजर हैं, वो लोग ठीक से रहेंगे तो फिर बाकी जनता जीव सब ठीक रहेंगे। और दैत्य जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले वो मैनेजरों को डिस्टर्ब करते हैं, व्यवस्थापक जो होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, ये दैत्यों का स्वभाव है। तो भगवान देवताओं को सुख देने के लिए अवतार लेते हैं। तो ऐसे प्रभु जो अवतार लिए, एक तो सातवत वंश में अवतार लिए हैं और विविध लीला कर रहे हैं, विविध लीला, अद्भुत लीला, इसलिए उनके यश का और अधिक विस्तार हो रहा है। यशो वितन्वन ब्रजयास्त ईश्वरो, यश विस्तारयन ब्रजय वयास्ते, कहीं गए नहीं हैं, ब्रजय आस्ते, ब्रजय आस्ते। तो यह दर्शन की सुगमता और निश्चित प्राप्ति के लिए कह रहे ब्रजय आस्ते, ब्रज में ही है, ब्रज छोड़कर कहीं गए नहीं। आज भी श्री कृष्ण ब्रजय वयास्ते, ब्रज में ही है, कहीं नहीं गए हैं, कहीं हैं द्वारका में, मथुरा में या वैकुंठ में, तो वहाँ भी हैं ही, यहाँ से नहीं गए हैं, यहाँ तो रहते ही हैं और वहाँ भी रहते ही हैं। भगवान तो एक ही समय में सब जगह रहते, आने जाने का कोई हिसाब नहीं है। तो ब्रजय आस्ते क्या करते हुए? जसह वितन्वन, यश का विस्तार करते हुए। किस प्रकार का यश? ये ब्रज में जो क्रीड़ा कर रहे हैं, जैसे गोवर्धन धारण आदि करते हैं, यश फैलता है पूरे विश्व में। देवलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र देव ही उस यश में कारण बन गए। तो वे जा करके अपने लोक में गोवर्धन धारण की लीला को कितनी अच्छी तरह से कहते होंगे। इसलिए गायन्ति देवा जदसे समंगलम, जद का अर्थ है जस, यहाँ पर जो जस, कैसा जस है? अशेष मंगलम, जिसे सबका मंगल होता है, सबका मंगल होता है, जो अशेष मंगलम कहा गया है। इस श्लोक पर विचार करने की आवश्यकता है। जद अशेष मंगलम, यश वितन्वन अस्ते अशेषाणी मंगलानी जस्मिन, तब सारे मंगल भगवान के यश में हैं। चाहे काली दमन हो, गोवर्धन धारण की लीला हो, रास विहार हो, या दवानल पान हो, पुतना वध, सकट भंजन, तृणावर्त वध, जो कुछ भी है, यह ब्रज संबंधी यश समझ लेना चाहिए। अक्रूर जी के मन में अभी जो असर हो रहा है वो ब्रज की लीलाओं का असर हो रहा है, और इन लीलाओं के विषय में कहते हैं कि अशेष मंगलम। अशेष का अर्थ होता है सर्व, एक भी बाकी न हो मंगल जिसमें, उसको अशेष मंगल कहा। सब प्रकार का मंगल, क्या क्या मंगल है? मंगल तो पहला तो यह है कि कोई बीमारी न हो, शुरू शुरू में शरीर स्वस्थ रहे, धन बना रहे, समाज में सम्मान रहे, इसके साथ ही सुमंगल क्या है, ये सब स्थितियाँ ठीक रह करके भगवान के चरण कमल में मन लगा रहे, भगवान के चरण कमलों में दिन पर दिन अनुराग बढ़ता रहे, उनका भजन होता रहे, इसको सुमंगल कहते हैं। खास करके उनके चरण में मन लगा रहे जिसको कृष्ण भावना कहते हैं, इसको सुमंगल कहा गया, और अंत में भगवान का धाम प्राप्त हो। तो ये सारे मंगल भगवान की कथा में रखे हुए हैं, अशेष मंगल। और ये कथाएं, ये भगवान की लीलाएं कैसे मंगल करती हैं, गाने और सुनने पर, केवल श्रवण मात्र से मंगल करते हैं, श्रवण कीर्तन करने से। अशेष मंगल का एक अर्थ है कि सभी मंगल इसमें हैं, अथवा इसके द्वारा सभी मंगल होते हैं, इसी में सारे मंगल हैं और इसके द्वारा सारे मंगल प्राप्त होते हैं, अथवा अशेष मंगलम का अर्थ श्री सनातन गोस्वामी जी करते हैं, अशेषाणाम विषयी मुमुक्षु भक्तादि नाम मंगलम जस्मत्त, या सबका मंगल जिसके द्वारा हो उसको अशेष मंगल कहते। तो तीन प्रकार के मनुष्य हैं इस जगत में, या देवता जीव, विषयी मुमुक्षु भक्त, जैसा दशम स्कंध के शुरू में ही महाराज परीक्षित ने कहा, निवृत्त तरस उपगीयमानात भवौ सदा क्षत्र मनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यत बिना पशुना। इस श्लोक की टीका में श्रीपद श्रीधर स्वामी यही बात कहे, संसार में अधिकांश लोग विषयी हैं। विषयी का अर्थ होता है वे इंद्रियों को सुख देने वाला पदार्थ चाहते हैं, बहुत सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। तो विषयों को सबसे उत्कृष्ट विषय देंगे ये यश भगवान के। यदि भगवान के कथा को, लीला को कोई गावे या सुने तो उसे उत्कृष्ट कोटि के विषय प्राप्त होंगे, स्वर्ग उसके हाथ में रखा हुआ है। अब ये कहिए घालू में मिल जाएगा स्वर्ग, तो घलुआ कहते हैं, घलुआ का अर्थ सभी लोग नहीं जानते होंगे, इसका अर्थ होता है प्रायः गांव में कुछ लोग सामान बेचने के लिए जब ले जाते हैं, खासकर गुड़ मसाला नमक, गांव में तो स्त्रियां गांव में अनाज ले करके और अनाज से अन्न से उसको खरीदती, तो बेचने वाला तो उसके अनुसार तौल करके दे देता है इतना, लेकिन बाद में स्त्रियां मांगती हैं थोड़ा सा और, तो ऐसे ही तो वो कुछ थोड़ा सा दे देता है, तो उसको मानती हैं कि मैं बहुत लाभ में हो गई, इसी को घलुआ या घालू कहते हैं। जो मूल है समान था वो तो मिल गया, थोड़ा सा ऊपर से मिल गया, ये स्वर्ग आदि तो भक्तों को ऐसे घालू में मिलेगा, तो असली तो उनको वैकुंठ मिलेगा, लेकिन अगर इच्छा रह गई तो उसित्वा शाश्वती समा, भगवान कहते हैं कि बहुत काल तक स्वर्ग में रह करके इसके बाद ठीक वैकुंठ चले जाएंगे, चाहे यहाँ आकर के जाएं अथवा डायरेक्ट जाएं। क्रम मुक्ति में भक्तों की इच्छा होती है कि जब जा ही रहे हैं वैकुंठ तो देख लें कैसा है स्वर्ग, इंद्र का लोक कैसा है, किसी किसी भक्त की कामना होती है। और देखने का मतलब है देखना, मतलब वहाँ का सुख कुछ भोगना, जरा देखें कैसा है ये, तो वहाँ का सुख भोगना चाहता है स्वर्ग का। अरे जब यहाँ का नारकी सुख आदमी भोगना चाहता है तो स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा कौन खराब है। तो ये सारे उत्कृष्ट कोटि के विषय मिलेंगे जीव को, जो भी अशेष मंगल। और मुमुक्षु जो हैं, जो जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हैं, दुख से उब गए हैं, किसी तरह संसार बंधन से पार होना चाहते हैं, शरीर नहीं चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उनको मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु का अर्थ है जो छूट कर भागना चाहता है, उस बंधन अनुभव हो रहा है, मुमुक्षु का अर्थ ही होता है जो मुक्त तो होना चाहे, तो मुक्त तो वही होना चाहेगा जो बंधन में पड़ा हुआ है, कहीं बांधा गया है खोल करके भागना चाहता है। तो यदि कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु से कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि भगवान कृष्ण के जस का गान करे और श्रवण करे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
मुमुक्षु बहुत कम होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोटि कोटि विषय में कोई एक व्यक्ति मुमुक्षु निकलता है। वास्तव में उसकी इच्छा होती है कि ये संसार में सुख नहीं है, सब दुख है, अब हमको पार होना चाहिए। तो उसको चाहिए, ऐसा अगर मुमुक्षु है तो उसको चाहिए कि रोज महामंत्र जपा करे, रोज भगवान का नाम जपे। अब सोहम शिवोहम से कुछ नहीं होगा, भगवान का जस गाना पड़ेगा तब मुक्त होंगे, नहीं तो और बंधते जाएंगे और बंधते जाएंगे। ये तो ठीक है, सह अहम का अर्थ होता है मैं यह देह नहीं हूं। शास्त्र वर्णन करता है, आत्मा का वर्णन करके कहता है सो मैं वह हूं, वह मैंने भगवान कृष्ण का नित्य दास। ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन सह अहम का ये अर्थ नहीं है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, वाह रे भगवान। कहने से हो जाएगा क्या? कोई रोड पर बैठ करके व्यक्ति कहे कि प्रधानमंत्री अहम, प्रधानमंत्री अहम, तब तो भारत में न्यूज चला जाएगा ना कि प्रधानमंत्री रोड पर बैठे हुए हैं। कहने से हो जाएगा क्या? माया बस प्रच्छिन्न जड़ जीव के इस समाज, कहाँ भगवान ईश्वर और कहाँ जीव निकृष्ट अविद्या से ग्रस्त। इसीलिए अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए कि मैं वही हूँ वही हूँ, कुछ नहीं, सीधा भगवान का नाम जपना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए भगवान को, जो चरणों में बार बार झुकना है। प्रणाम करना और नाम जप करना वास्तव में केवल दो ही साधन है। इसलिए भागवत के अंतिम श्लोक में शुद्ध जी कहते हैं नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है और जिनके चरणों में किया गया प्रणाम सब दुख से मुक्त कर देता है, ऐसे श्री हरि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बस प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब ये सोचना कि मैं वही हूँ, ये तो पागलपन है, ये सीधा पागलपन है। वास्तव में पागलपन ही नहीं, मूर्ख पागल। जब पागल खांटी हो जाए आदमी तब भी वह ठीक है, लेकिन इस तरह से विचार करना। देवता लोग भगवान का जस गाते रहते हैं, यह बात यहाँ कही गई है और अशेष मंगलम पर कहा जा रहा है। मुमुक्षु कुछ देखे जाते हैं, छूटना चाहते हैं कि हम राग द्वेष काम क्रोध लोभ से छूट जाएं, जन्म मृत्यु से छूट जाएं। तो इस रोग से छूटने के लिए भवावसधा सबसे उत्तम औषधि है महामंत्र का उच्चारण, सबसे उत्तम। और भगवान के जस को गाना, गीत गाना। और भक्ताना भक्तों के लिए तो यही सबसे सुंदर पेय पदार्थ है, खाने लायक है, यही अमृत। तो ये तो सदा इसको गाते ही रहते हैं। अशेष मंगलम का यह अर्थ है, अशेषाणाम विषय मुमुक्षु भक्तादीना मंगलम। तो कैसे मंगल होता है? केसांचित साधनत्वे न केसांचित साध्यत्वे न इत्यर्थ यथा यथम विवेचनीय। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अशेष मंगल होता है तो किसी किसी के लिए भगवान का यश साधन का काम करता है, जैसे मुमुक्षु के लिए, परंतु भक्तों के लिए यही साध्य है, ये साधन नहीं। तो जथा जथम विवेचनीय, हम जैसा हो वैसा बैठा लेना चाहिए, सबका मंगल। अशेषाणाम विषय मुमुक्षु भक्तादीना मंगलम, तो विषय मुमुक्षु और भक्त तीनों में जथाजथ बैठा लेना चाहिए, किसके लिए साधन है और किसके लिए साध्य है। वास्तव में तो साध्य है, भगवान की भक्ति भगवान से प्रेम करना यही साध्य, ये लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ ही साधन भी है, संसार बंधन से छूटने का, दुख से छूटने का, सुमंगल प्राप्त करने का यह साधन है। तो चाहे कोई साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करे अथवा साध्य के रूप में, सब तरह से यही गाने योग्य है। इसीलिए संसार के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े कवि, विवेकी लोग देवता हैं, जो सदा भगवान का जस गाते रहते हैं। देवताओं के लोक में फिल्मी सिल्मी गाना नहीं है, और भगवान के अलावा वहाँ कोई दूसरा मंत्र नहीं जपा जाता है। गायन्ति देवा जदसे समंगलम, देवता लोग भगवान के जस को गाते रहते, गायन्ति। अक्रूर जी रथ पर चढ़े चढ़े जा रहे हैं और कहते हैं गायन्ति, जो ध्यान कर रहे हैं कि ब्रज में देवता रोज आते हैं, भगवान शिव जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र आते हैं, इंद्र तो एक बार स्पेशल आए थे गोवर्धन धारण के बाद, भगवान का गोविंदा अभिषेक किए थे, लेकिन ये देवताओं के विमान रोज आते ही रहते हैं। तो वे अपने लोक में जाकर गाते हैं, रास्ते में गाते जाते हैं, भगवान की जो लीलाएं देखते हैं सुनते हैं उसको गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, क्योंकि आनंदामुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, बहुत सुख है, सब प्रकार का मंगल है भगवान के जस में। यह एक संदेश है कि जैसे देवता लोग गाते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि भगवान के कीर्ति को सदा गाता रहे, बोलता रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जो प्रभु इतने महान हैं, इतने यशस्वी हैं, इतने सुमधुर हैं, ये देवता लोग उनका गान करते रहते हैं। आज साक्षात मैं उनको देखूंगा, उनके चरण कमलों में नमस्कार करूंगा, मेरा कितना बड़ा भाग्य होगा, अक्रूर जी यह सोचते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह भगवान की महिमा गा करके अब वो मन में सोचते हैं कि भगवान मेरे निवेदन को सुनकर मथुरा आएंगे कि नहीं, सोच रहे। तो कभी कभी सोचते हैं कि वे नहीं आएंगे, इतना अधिक सुख में हैं ब्रज में, ब्रज एव आस्ते, ब्रज में ही हैं। आस्ते का अर्थ है कि वहीं पर बस बसे हुए हैं, वहीं हैं। जब से भगवान ब्रज में आए मथुरा से, तो ब्रज में रहते समय यहाँ से कहीं नहीं गए, एक दिन के लिए भी नहीं गए, मतलब जब तक थे तब तक एक दिन के लिए नहीं गए। लेकिन द्वारका से वे प्रायः हस्तिनापुर जाते रहते थे, देवताओं के लोक में जाते रहते थे, तो वहाँ महाकालपुर गए थे अर्जुन के साथ, पढ़ने भी चले गए थे, वहाँ से इधर उधर जाते रहते, लेकिन ब्रज से बाहर एक दिन नहीं गए। तब अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि लगता है कि हमारी प्रार्थना के बाद भी मथुरा नहीं आए। ये कह सकते हैं कि कुछ भी हो, हम ब्रज का आनंद नहीं छोड़ें, लेकिन जब कहते हैं स्वसे तु पाला मरवर्ज शर्म के, तो गायन्ति देवा जदशेष मंगलम, तब थोड़ा विश्वास हो रहा है कि जब भगवान देव गेय हैं, देवता लोग उनका जस गाते रहते हैं, और सातवत वंश में अवतार लिए हैं, तब देवताओं के हित के लिए और यादवों के हित के लिए मथुरा आ सकते हैं, यह भाव है इसमें। रास्ते में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं ना, मनोरथ के साथ साथ कुछ और भी विचार कर रहे हैं कि भगवान को लाना है मथुरा में। तो कभी कभी सोचते हैं कि वे आएंगे, कभी कभी सोचते हैं नहीं आएंगे। अच्छा, इस प्रकार जस का महात्म दिखाया गया। तो ऐसा जिनका जस है उनको मैं साक्षात देखूंगा, ये तू शब्द वाक्य अलंकार में दिया गया। तम त्वद्यनूनम महतां गतिम गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन् महोत्सवं द्रक्ष्यामि। रूपं दधानं श्रियेप्सितास्पदं द्रक्ष्यामि द्रक्षे ममासन उससः सुदर्शन। ऐसे प्रभु को मैं देखूंगा, द्रक्षे, और आज देखूंगा। तम तू अद्य द्रक्ष्यामि, द्रक्षे का अर्थ देख रहा हूँ, ये द्रक्षण देख रहा हूँ, देखूंगा ऐसा नहीं कहते हैं, देख रहा हूँ कहते हैं। तो वर्तमान समय पे लग, वर्तमान समय पे वर्तमान वर्त, बहुत शीघ्र ही भविष्य में दर्शन होने वाला है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, भगवान को देखूंगा। कैसे हैं, मन में सोचते जाते हैं, महता गति, महत पुरुषों की जो गति है, गति के दो अर्थ हैं, एक तो साधन और दूसरा आश्रय। और आश्रय का अर्थ है जितने भी महान पुरुष हैं इस जगत में, वे भगवान को ही अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मानते हैं, लक्ष्य मानते हैं, तो उनके गंतव्य महतम गति, महात्माओं के साधन भी हैं और साध्य भी। गुरु, गुरु का अर्थ है सहायक, हितोपदेष्टा, जो हित की बात बतावे और सब तरह से रक्षा करे, उसको गुरु कहा गया। तो महात्माओं के, सत्पुरुषों के, साधुओं के या देवताओं के, ब्रह्मा आदि के या नंद आदि के, वही गति। महात्म का कई अर्थ किया गया है, नंदादि नाम, ब्रह्मादि नाम, साधु नाम, इनको महत कहते, महत कहते बड़ा व्यक्ति, बड़ा, तो बड़ा उसको कहते हैं कोई शरीर आदि के साइज के अनुसार नहीं, जिसका मन बहुत बड़ा है उसको महत कहा गया है, जो भगवान में आसक्त रहता है उसको महत कहते। तुच्छ लोग इस संसार को पसंद करते हैं, लेकिन महान पुरुष भगवान को पसंद करते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, इसलिए भगवान के हम महतम गतिम कहा गया। और भगवान मिलते हैं भगवान की कृपा से, भगवान मदद करते हैं, इसलिए उनको गुरु कहा गया, महतम गतिम गुरु। त्रैलोक्य कांतम, त्रैलोक्य कांतम का अर्थ है कि तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं सभी भगवान की कामना करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड तीन जोन में बांटा गया है, इसको त्रिलोक कहते हैं, और तीन लोक फिर 14 जोन में बांटा गया है, तो उसको 14 भुवन कहते हैं। तीनों में ही फिर ऐसा हो गया है, कुछ कोई रेखा नहीं खींची गई है, कोई झगड़ा नहीं होता है कि नीचे का लोक है अरे ऊपर का है, इसमें मत आओ इसमें मत जाओ, लेकिन ऐसे समान रूप से एक मान लिया जाता है, ऊपर का लोक, नीचे का लोक और मध्य का लोक। हम लोग जो इस लोक में रह रहे हैं ये सदा शास्त्रों में मध्य लोक माना गया है, मध्य मतलब बीच का। और इसके अलावा बिल स्वर्ग है, जिनको तल अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, पताल कहते हैं, ऊपर देवताओं का लोक, और मनुष्यों से लाखों गुना अधिक समृद्धि ऊपर और नीचे सब दोनों जगह। मनुष्य लोक में तो केवल दुख भरा गया है भगवान द्वारा, यहाँ कोई चीज नहीं है वास्तव में, देवताओं की तुलना में और दैत्यों की तुलना में, सर्पों की तुलना में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वे लोग बहुत सुंदर होते हैं, देवता लोग बहुत सुंदर, उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं आती है। भागवत में लिखा गया है कि उनके लोक में ऐसी ऐसी नदी बहती है कि नदी का वो जूस पीते हैं, जूस की नदियां बहती हैं, फल के जूस जैसे जामुन का शुद्ध रस बहता रहता है। एक ऐसा वृक्ष है कदम्ब, जिसमें से बताया गया है कम से कम यमुना मंदिर का जितना आयतन है इतनी मोटी मधु धारा निकलती है, मधु की धारा, जिस मधु को हम लोग और भी थर्ड क्लास के मधु को बोतल में रखते हैं, कभी कभी खाए, इससे बहुत उत्कृष्ट कोटि का मधु बहता रहता है, नदी बहती है। और लिखा गया है कि उसको जो लोग खाते हैं, जो लोग खाते हैं मतलब देवता ही तो खाते हैं, वहाँ कोई दूसरा कोई जाएगा ही नहीं, तो वो लोग जब मधु को खाते हैं तो उनके शरीर में कभी भी केश नहीं पक सकते, झुर्रियाँ नहीं पड़ सकती, शरीर में पसीना नहीं निकलता है, वृद्ध नहीं हो सकते हैं, सुख से रहे। न कभी किचन और गैस ये सब की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, कभी पकाया नहीं जाता है भोजन। मनुष्य लोक में तो खाने पकाने में ही सारा समय चला जाता है। और वास्तव में जोड़िए तो खाना पकाना, बाथरूम जाना, कपड़ा साफ करना, ये करना, इसी में जिंदगी जा रही है। और बचा खुचा समय सोने में, भजन करने चलिए तो भागवत सुनने चलिए, उसमें भी नींद आने लगती। जब आदमी भजन करने चला है कि अब जप करेंगे, तो जप अभी एक माला पूरी नहीं हुई तब तक जप किया आने लगता। ये मनुष्य लोक की दशा है, देवताओं के लोक में ये सबसे नहीं, उनके इच्छा के विरुद्ध नींद नहीं आ सकती। तो बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान इतना सुंदर हैं, इतना कमनीय हैं कि तीनों लोक में सभी उनकी कामना करते हैं। तीनों लोक में उनकी कामना करते हैं, जिनको भगवान का ज्ञान है वे, और जिन लोगों को भगवान का पता ही नहीं है वे तो वहीं की चीज़ों को पसंद करते हैं। सुअर सुअर को पसंद करता है, तो पक्षी पक्षी को पसंद करता है। ज्ञान ही नहीं है उनके लिए बात नहीं कही जा रही है। जो भगवान को जानते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के लोक में या भगवान इंद्र के लोक में या बलि महाराज के लोक में या इस पृथ्वी पर भी जो भाग्यवान मनुष्य हैं, जिस किसी तरह से किसी साधु की कृपा से, भागवत की कृपा से, जैसे तैसे जो श्री कृष्ण को जानते हैं, तो कृष्ण की ही कामना करते हैं। इसीलिए कृष्ण को यहाँ कहा गया त्रैलोक्य कांतम, तीनों लोकों में एकमात्र कमनीय भगवान इच्छित, इनकी इच्छा करते हैं। श्रीधर स्वामी जी अर्थ लिखते हैं त्रैलोक्य एकमेव कांतम, तीनों लोकों में भगवान कृष्ण ही कांत है। कांत का अर्थ होता है प्रियतम, प्रिय। एकमेव कांतम, त्रैलोक्य कांतम। एक टीकाकार अर्थ करते हैं कि तीनों लोक में जितनी स्त्रियां हैं उन सब के लिए ये कहीं कांत है कृष्ण, और कोई नहीं। त्रैलोक्य कांतम। और श्रीपद सनातन गोस्वामी जी एक अर्थ लिखते हैं त्रैलोक्य कांतम, त्रैलोक्यम अपि कांतम भवति जस्मत् तत्। तीनों लोक सुंदर लगने लगता है, प्रिय लगने लगता है जिनके कारण, उनको त्रैलोक्य कांत का। भगवान है इस जगत में, उनका कुछ सौंदर्य एकाध बूंद इधर है फैला हुआ पूरे ब्रह्मांड में, इसीलिए संसार अच्छा लगता है। अथवा सौंदर्य समुद्र से जस्यांश विभाग मात्र प्राप्त रात्रि लोकी वर्ती सौंदर्य जनता देती अर्थ। तीनों लोकों में जितना भी सौंदर्य है, चाहे चंद्रमा में हो या कमल में या किसी व्यक्ति में, देवताओं में, देवताओं की स्त्रियों में, वो भगवान के सौंदर्य समुद्रस्य जस्यांश विभाग मात्र प्राप्त है। भगवान के सौंदर्य सुधा सिंधु के एक सीकर से सब जगह सौंदर्य बांटा गया है। भगवान सौंदर्य के समुद्र हैं। अथवा त्रैलोकस्य कम, कम का अर्थ होता है सुख। तीनों लोकों का जो सुख है, तस् अंतो नासो जस्मत् स त्रैलोक्य कांत। तम, तीनों लोकों में जितना क है, सुख है, उसका भगवान कृष्ण नाश कर देते हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को देख लेता है, उसको तीनों लोकों के सुख से वैराग्य हो जाता है। तो एक प्रकार से भगवान कृष्ण तीनों लोकों के सुख का नाश कर दिए। जो कृष्ण को देख लेता है, उसको अब यह, उसकी ये भावना नहीं रह जाती है कि तीनों लोक में और भी कहीं कोई सुंदर है और कहीं कोई सुख दे सुख है। जो देखने की बात तो छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति केवल भगवान की कथा को सुनता है, पढ़ता है, वह भी तीनों लोकों के सुख का नाश कर देता है। तीनों लोकों में कहीं उसे सुख दिखाई नहीं पड़ता है। तो त्रैलोक के कांत, तीनों लोकों के क का अंत कर देते हैं कृष्ण, यह अर्थ है। न केवलम त्रिलोक्यंतर्गत विषय सुखे सुखे व वैराग्यम से, भगवान कृष्ण की भक्ति करने पर केवल तीनों लोगों के सुखों से ही वैराग्य नहीं हो जाता है, किंतु मोक्ष सुखे अपित्याह दृष्टि आत्मानुभव तद्वता महोत्सव रूपम सौंदर्य। जो आँख वाले हैं इस जगत में, तीनों लोकों में आँख वाले दृषि मत दृष्टिमान, दृषि का अर्थ दृष्टि और मत का अर्थ वाला, जितने भी दृष्टि वाले हैं इस संसार में, दृष्टि वालों के लिए उनके दृष्टि का उनके आँखों का महा उत्सव है भगवान कृष्ण, महा उत्सव। उत्सव का अर्थ होता है सुख उल्लास, दृष्टि वालों के लिए सबसे बड़ा सुख भगवान है। तो भगवान का दर्शन करके उनको देख करके ही सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। इस जगत में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य देख करके भी बहुत सुखी हो जाते हैं किसी किसी को, ये स्वभाव है। लेकिन यह केवल आँख वालों के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको आँख नहीं है, जैसे वृक्ष। वृक्षों को आँख नहीं है। और कुछ ऐसे कीट पतंग भी होते हैं, उनके शरीर में ब्रह्मा जी आँख नहीं बनाए, ऐसे ही शरीर को वो घसीटते रहते हैं इधर से उधर, देखते नहीं हैं। ऐसा मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, विज्ञान की पुस्तक। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको आँख नहीं रहते, लेकिन आँख वाले जो हैं जो देखते हैं, तो देखने वालों के लिए सबसे सुंदर विषय हैं भगवान, महाउत्सव महोत्सव। महाउत्सव शब्द कह देना बहुत बड़ी बात हो गई, इसमें दो बार महा लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोक में महामहोत्सव कहा जाता है मरने को। महोत्सव काफी है, महाउत्सव। भरतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं कि मरना भलो विदेश में, जहाँ न अपनों को कोय, माटी खाए जनावरा महामहोत्सव हो। महामहोत्सव का अर्थ ही होता है मरणोत्सव। लेकिन कभी कभी भाषा का ज्ञान नहीं होने से कहते महा महामहोत्सव, चाहे महामहोत्सव नहीं महोत्सव, महाउत्सव उसका। जैसे महाप्रयाण कह दिया जाए कि वो तो महाप्रयाण कर गया, तो इसका अर्थ नहीं है कि बहुत सज धज करके बहुत बड़ी जर्नी निकाला। महाप्रयाण मतलब शरीर छोड़कर चला गया, महामहोत्सव मतलब ये महोत्सव ठीक शब्द है। आँख वालों के लिए सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा फेस्टिवल है कृष्ण को देखना। और भगवान को देख करके कितना जीव सुखी हो जाते थे, वृंदावन का वर्णन है कि गौएं घास चरना छोड़ देती थी बांसुरी का स्वर सुनकर, कृष्ण को देखकर। और जो ये पक्षी जो दिन में चेंचा करते रहते हैं, हमेशा खाने के फेर में रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को देखते थे वृक्ष की डाली पर बैठ करके और बांसुरी सुनते थे, तो ये लोग भी बोलना छोड़ करके खाना छोड़ करके चुपचाप बैठ रहे, आनंद में मग्न हो जाते। बछड़े अपने मुख में माँ के दूध को लिए रहते थे और पी नहीं पाते थे, भोजन आदि का रस भी समाप्त हो जाता। महोत्सव, गोपियाँ सबसे ज़्यादा जो उत्सुक रहती थी भगवान को देखने के लिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि वे आत्म सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए ललायत नहीं रहते थे, भगवान को देखने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए। देखना ही महोत्सव, अरे देखो ये देखो देखो देखो, हल्ला हो जाता था। कहीं कृष्ण जाते थे, आए हैं तो देखने के लिए। मथुरा जब गए तो वर्णन है कि जो स्त्रियां भोजन कर रही थी, जो पति की सेवा कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, जिन ही उन लोगों ने सुना कि वृंदावन के कृष्ण मथुरा आए हैं, पति की सेवा आदि खाना जो परसी थी वो सब छोड़ छाड़ करके चल, एक भी नहीं रुक पाए। लेकिन वे लोग भी दोष दृष्टि नहीं किए, वे लोग भी खाना दाना छोड़ करके सब चले देखने के लिए भगवान। और कोई एक पैर में नूपुर पहनी थी तो वैसे ही पहने हुए आ गई, एक आंख में काजल लगाई थी वैसे ही आ गई। जेम ही सुना कि कृष्ण आ गए मथुरा में, तेहूँ उनको देखने के लिए सभी स्त्रियां और पुरुष बच्चे सब चल दिए, काम की पूर्णता पर ध्यान नहीं गया। ये जो छोटे छोटे बच्चे थे जो चल नहीं सकते थे, लेटे थे, उनको भी देखने की इच्छा के याद तक नहीं आई, सब लोग कृष्ण को देखने के लिए चल दिए। और प्रतिदिन जहाँ भी भगवान जाते थे उनको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। यह बिल्कुल सत्य बात है, भागवत में कई बार यह कही गई है बात, भगवान को देखने की लालसा। हम देखते हैं इस्कान में सर्वत्र मंदिर हैं, सर्वत्र विग्रह हैं, परंतु वृंदावन में कृष्ण बलराम को, राधा श्याम सुंदर और गौर निताई को देखने में जितना रोज उत्सव जैसा लगता है, ऐसा कहीं नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि रोज एक नया फेस्टिवल हो रहा है, ऐसा लालसा रहती है भक्तों की। भगवान का पट खुलता है तो जय जय कहकर के और फूल बरसा, तो प्रतिदिन यहाँ नया उत्सव जैसा लगता है भगवान को देखने की लालसा। और देखने में तो कुछ लोग इतना आसक्त रहते हैं कि वो हटते ही नहीं हैं। कुछ लोग मान लें कि यह डीटी हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है। खास करके माता जी लोगों का तो पूर्णाधिकार है, क्योंकि यहाँ पर तो राधा रानी ही स्वामिनी है, तो अब उनको कौन हटाने जाए। लेकिन यह लालसा वास्तव में केवल इसी मंदिर में है, इतने टॉप लालसा। और जगह शंख बजता है, पट खुलता है, गोविंदवादी पुरुषम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जैसी लालसा नहीं देखी जाती। ये धाम का प्रभाव। यहाँ कोई केयर भी नहीं करता है कि उसके पीछे कौन है, क्या है, पीछे हो चाहे जाए कहीं भी, हमको देखने दो। यह अच्छा है वास्तव में, यहाँ कुछ भी नियम बनाया जाए लेकिन देखने वाले बहुत लालसा से देखना ही चाहते हैं। कभी कभी कुछ लोग हटाते हैं, ये इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। देखने दो। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो एक स्त्री को कंधे पर ले करके और उसको दर्शन करा रहे थे, जगन्नाथ जी का ये वर्णन है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का गरुड़ स्तंभ के पास, एक माता जी आई, उड़िया माता जी, तो वो स्त्रियों का शरीर ऐसे ही छोटा होता है और पुरुष लंबे लंबे आगे खड़े थे, तो भगवान जगन्नाथ का मुख कमल दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो सर देखने के लिए इतना उत्कंठिता थी, इतना उत्कंठिता को देखी, कैसे देखूं कैसे देखूं, तो गरुड़ स्तंभ पकड़ लिया, गरुड़ स्तंभ पकड़ करके चढ़ने लगी और चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर एक पैर रख दी, वहीं खड़े थे। उसको ये ध्यान नहीं है कि मैं किसी सन्यासी के कंधे पर पैर रखी, और गरुड़ स्तंभ को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ी थी, पकड़ करके और कंधे पर, भगवान के कंधे पर पैर रखी थी। उसको देखते ही गोविंद तो बिल्कुल मुग्ध हो गए। जो भगवान स्त्री शब्द का भी उच्चारण नहीं करते थे, उनके कंधे पर पैर दे करके स्त्री भगवान का दर्शन कर रहे, तो गोविंद तो कहने लगा उतरो पीछे, छू भी नहीं सकते थे, उतरो उतरो उतरो। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो खा रहे छोड़ना 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 दर्शन करने, वो रोक दिए गोविंद को अपने सेवक, छोड़ दर्शन करने। जब दर्शन करके बाद में वो स्त्री उतर गई, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु रोना चालू किए, कहने लगे कि जगन्नाथ जी हमको इतना प्रेम नहीं दिए जितना इस स्त्री को दिए, इसको इतना तक ध्यान नहीं है कि मैं सन्यासी के कंधे पर पैर रखी हूँ। इतनी दर्शन की लालसा जगन्नाथ जी ने हमको नहीं दिया तो मना कर दिए। इस प्रकार के दर्शन की लालसा होती है। भगवान के रूप का वर्णन तो बहुत बहुत पदों में किया गया है, त्रैलोक के कांतम दृश्यमन महोत्सव आँख वालों के लिए महान उत्सव है भगवान कृष्ण का रूप, तो उसे मैं आज देखूंगा। श्री ऐप्सितास्पदम, और रूप कैसा है कि श्री जी नारायण की वक्षो विलासिनी लक्ष्मी जी भी लक्ष्मी जी की इच्छा का आस्पद स्थान है भगवान का रूप। वे भी चाहते हैं कि भगवान के रास विलास वंशी वादन आदि का मैं आस्वादन करूं, या भगवान कृष्ण मुझको भी अपनी चरण सेवा का अवसर दें, या जैसे गोपियों के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं वैसे मुझ पर भी रखें लेते हैं। केवल इच्छा भर करती है, भगवान आज तक उनको नहीं मिले। यद्यपि भगवान कृष्ण के ही दूसरे स्वरूप भगवान नारायण के साथ वैकुंठ बिहारी के साथ वे नित्य रहते हैं,